मे ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं चतं यामि परं परायणम् नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं चतं यामि परं परायणम् नमामि मे ज्ञातय आतुरं गजा कुतः करिण्यः प्रभवन्ति मोचितुम् ग्राहेण पाशेन विधातुरावृतो अप्यहं चतं यामि परं परायणम्
शब्दार्थ ना नहीं माम मुझको इमे ये सब ज्ञातयः मित्र तथा संबंधी आतुरम मेरे दुख में गजः हाथी कुतः कैसे करिण्यः मेरी पत्नियां प्रभवन्ति समर्थ हैं मोचितुम इस संकट में स्थिति से उद्धार करने में ग्राहेण घड़ियाल से पाशेन फंदे से विधातु भाग्य के आवृतः बंदी अपि यद्यपि मैं ऐसी स्थिति में हूँ अहम मैं च भी तम उस भगवान की यामी शरण में जाता हूँ परम जो दिव्य हैं परायणम जो ब्रह्मा तथा शिव जैसे सम्मानित देवताओं की भी आश्रय हैं। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्री प्रभुपाद की अनुवाद। जब मेरे मित्र तथा अन्य संबंधी हाथी मुझे इस संकट से नहीं उबार सके तो मेरी पत्नियों का तो कहना ही क्या, वे कुछ नहीं कर सकती। यह विधाता की इच्छा थी कि इस घड़ियाल ने मुझ पर आक्रमण किया है, अतएव मैं उन भगवान की शरण में जाता हूँ जो हर एक को यहाँ तक कि महापुरुषों को भी सदैव आश्रय प्रदान करते हैं। तात्पर्य, यह संसार पदम पदम यद विपदाम हितेशम के रूप में वर्णित है, जिसका अर्थ है कि इसमें पग पग पर संकट है। मूर्ख झोटे ही सोचता है कि वह इस भौतिक जगत में सुखी है, लेकिन वास्तव में वह सुखी रहता नहीं, क्योंकि जो ऐसा सोचता है वह मोहग्रस्त है। इसमें पग पग पर और हर क्षण संकट है। आधुनिक सभ्यता में मनुष्य सोचता है कि यदि उसके पास सुंदर मकान और सुंदर कार हो तो उसका जीवन पूर्ण है। पाश्चात्य जगत में विशेषतः अमेरिका में अच्छी कार रखना उत्तम बात है, किंतु जो ही वह सड़क पर कार चलाता है तो उसे संकट बना रहता है, क्योंकि वह किसी भी क्षण दुर्घटना में मर सकता है। आंकड़े बताते हैं कि ऐसी दुर्घटना में अनेक लोग मरते रहते हैं। अतएव यदि हम वास्तव में यह सोचते हैं कि यह संसार अत्यंत सुखमय स्थान है तो यह हमारा ज्ञान है। असली ज्ञान यह है कि यह भौतिक जगत संकटों से पूर्ण है। हम वहीं तक जीवन संघर्ष कर सकते हैं जहां तक हमारी बुद्धि काम करती है, और इस तरह अपनी सुरक्षा करने का प्रयास कर सकते हैं, किंतु जब तक भगवान कृष्ण हमें अंततः संकट से बचा नहीं लेते तब तक हमारे प्रयास व्यर्थ रहेंगे। अतः प्रहलाद महाराज कहते हैं भागवतम 7.9.19, बालस्य नेहा शरणम पितरो नृसिंहानार्तस्य चागदगम उद्वंति मज्जनो वे तप्तस्य तत्प्रति विधेर्य इज्जात श्रेष्ठस्तावद् विभो तनुभृताम् तदुपेक्षितानाम्। भले ही हम सुखी रहने या इस भौतिक जगत में संकटों का सामना करने के लिए कितने ही साधन क्यों न ढूंढ लें, किंतु जब तक हमारे प्रयासों को भगवान से पुष्टि नहीं मिल जाती वे हमें कभी सुखी नहीं बना पाएंगे। जो लोग भगवान की शरण लिए बिना सुखी रहने का प्रयास करते हैं वे मूढ़ हैं। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा। अधम लोग कृष्ण भावनामृत ग्रहण करने से मना कर देते हैं, क्योंकि वे सोचते हैं कि कृष्ण की रक्षा के बिना ही वे अपनी रक्षा कर लेंगे। यह उनकी भूल है। गजेंद्र का निर्णय सही था। ऐसी संकटमय स्थिति में उसने भगवान की शरण ग्रहण की। ओम अज्ञानतिमिरांधश्च ज्ञानांजनशलाकया सच्छुरमिलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी तिथि नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो नौधा भक्ति में श्रवण भक्ति के आचार्य परीक्षित महाराज हैं, और जब परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी गंगा नदी किनारे कथा सुना रहे थे, 5 दिन की कथा संपन्न हो गई थी। 6ठे दिन सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज से कहा कि हे राजन, आपको भूख नहीं सता रही है? आज 5 दिन की कथा हो गई और आप ऐसे ही एक आसन पर बैठ के कथा सुन रहे हैं। आप जिस अवस्था में हैं, इस अवस्था को प्राप्त करने के लिए बहुत तपस्या करनी पड़ती है। बड़े बड़े योगी भी इतना धैर्य नहीं रख पाते हैं, या योगियों को उस स्थिति में पहुंचने के लिए भी काफी लंबा साधना करना पड़ता है, और ऊपर से आप एक राजा थे, एक छत्र साम्राज्य था आपका पृथ्वी पे। जस्ट 5 दिन पहले आपको श्राप मिला और आप आए और आपने कथा श्रवण चालू कर दिया, और आपको भूख नहीं सता रही है, निद्रा नहीं सता रही है, आपके शरीर में भी कोई विक्षोभ नहीं हो रहा है, परीक्षित महाराज ने कहा, नैसा च दुस्सहा छुन्मा त्यक्तो दपि बाधते पिबंतम त्वत् मुखाम भोज अच्युतम हरि कथामृतम। हे सुखदेव गोस्वामी जी, नैसा च दुस्सहा छुन्मा त्यक्तो दपि बाधते, आप भूख की बात कर रहे हैं, नींद की बात कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में मुझे अभी प्यास की निद्रा, प्यास की तंद्रा भी नहीं सता रही है, क्योंकि भूख प्यास ये सबको बर्दाश्त करना ये सबके बस की बात नहीं होती है। तो आप भूख और निद्रा की बात कर रहे हैं लेकिन मुझे अभी प्यास भी नहीं सता रही है। वही परीक्षित महाराज हैं जो कुछ दिन पहले अभी जंगल में गए थे, शिकार कर रहे थे, और शिकार करते करते हमको थकान महसूस हुआ, हमको प्यास लग गई, और उनसे छोटा सा प्यास नहीं बर्दाश्त हुआ और एक ऋषि का अपमान कर बैठे। और आज यही परीक्षित महाराज 5 दिन से भूख और प्यास को सहन किए हुए हैं। तो परीक्षित महाराज कह रहे हैं कि हमको प्यास भी नहीं सता रही है, तो मानो सुखदेव गोस्वामी पूछ रहे हैं क्यों, क्या हो गया, ऐसा 5 दिन में कौन सा परिवर्तन हो गया। तब परीक्षित महाराज कह रहे हैं पिबंतम तन मुखाम भोज अच्युतम हरि कथा अमृतम, ये जो आपके मुख से श्रीमद् भागवत की, भगवान हरि की कथा रूपी अमृत का पान कर रहा हूं मैं, जिसके कारण मुझे ये सब चीजें सता नहीं रही, कथा रूपी अमृत का पान करने का प्रभाव है। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज के चरणों में प्रणाम करते हुए हम सभी भक्तों को प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि संसार में जीवात्मा अनंत प्रकार की तृष्णाओं के साथ जन्म लेता है, बहुत प्रकार की तृष्णा है, बहुत प्रकार की प्यास है, और इसी की पूर्ति करने में जीवात्मा लगा हुआ है, जिसके कारण उसका भव प्रवाह भी बना हुआ है, जन्म मृत्यु के चक्कर में भी फंसे हुए हैं, क्योंकि अतृप्त कामनाओं की इच्छा की पूर्ति के लिए अनेक उद्यम करना पड़ता है संसार में, और जितना हम सकाम प्रकार का उद्यम करते हैं उतना हम इस जगत में फंसते जाते हैं। तो इसलिए यदि इस भव प्रवाह के चक्कर से मुक्त होना है तो सभी भक्तों को, जैसे कि सभी आचार्यों का कहना है कि भक्त का जो जीवन होता है वो भागवत होता है, भागवत के बगैर भक्तों का जीवन नहीं है। क्यों? क्योंकि भागवत पढ़ने में, भागवत सुनने में यदि हमारा रुचि हो गया, हमारी इच्छा विकसित हो गई, तो जरूर हम धीरे धीरे, जैसा कि हम डेली स्मरण करते हैं भागवत से पहले, नष्ट प्राय स्वभद्रेशु नित्यम भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोक है भक्तिर्भवती नैष्टुकी, कि जितने भी हमारे अनेक प्रकार के अनर्थ है, वासनाएं हैं, ये भागवत सुनने के द्वारा, ध्यान पूर्वक सुनने के द्वारा धीरे 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 साफ हो जाएंगे और हम भगवान के प्रति हृदय के अंदर प्रेम विकसित कर लेंगे। तो उसी परम पवित्र श्रीमद् भागवतम ग्रंथ से हम अभी 8वें स्कंध पे चर्चा कर रहे हैं। 8वें स्कंध की शुरुआत होती है मुख्य रूप से सुखदेव गोस्वामी के प्रवचन से। सुखदेव गोस्वामी राजा परीक्षित को मनवंतर के विषय में बता रहे हैं कि किस प्रकार जब मनवंतर चेंज होता है, जैसे कि हम जानते हैं कि ब्रह्मा जी के 1 दिन में 14 मनु होते हैं, और जब मनु का कार्यकाल चेंज होता है तो कार्यकाल में क्या क्या चेंज होता है, कैसी स्थितियां बदलती हैं, इसका वर्णन प्रारंभ करते हैं। क्योंकि हर मनु के कार्यकाल में सभी देवताओं का पोस्ट चेंज हो जाता है, जैसे चुनाव होता है, चुनाव में जब पार्टी बदलती है, दूसरा पार्टी का नेता चुना जाता है, तो पूरा जितना भी मंत्रिमंडल होता है पूरे विभाग चेंज हो जाते हैं, सबके मंत्री मिनिस्टर चेंज हो जाते हैं। उसी प्रकार मनवंतर में भी ऐसी स्थिति होती है, जब एक मनु का कार्यकाल बीतता है दूसरे मनु कार्यकाल आता है, तो उसमें इंद्र का पोस्ट बदल जाता है, सप्तऋषि का पोस्ट बदल जाता है, और सभी देवी देवताओं का पोस्ट बदल जाता है ज्यादातर। तो वही प्रसंग की शुभारंभ करते हैं सुखदेव गोस्वामी जिसमें कहते हैं कि शंभू मनु, पहले शंभू मनु के विषय में बताते हैं और शंभू मनु के शासन में भगवान विष्णु यज्ञपति के रूप में अवतार लेते हैं। और चूंकि इस भौतिक ब्रह्मांड की संरचना को चलाने के लिए सबसे बड़ा पोस्ट जो है वो ब्रह्मा जी का और इंद्र का है, सबसे बड़ा पोस्ट। और ब्रह्मा और इंद्र भी एक जीवात्मा है, लेकिन ये इतना बड़ा पोस्ट है क्योंकि ये पूरे ब्रह्मांड की संरचना कंट्रोलर वही लोग होते हैं, नियंत्रक हैं वो। तो कभी कभी किसी स्थिति में यदि जीवात्मा उस स्तर का नहीं रहता है कि वो ब्रह्मा या इंद्र बन सके, तो भगवान ही ब्रह्मा और इंद्र का पोस्ट संभालते हैं। तो उस स्थिति में शंभू मनु के विषय में बता रहे कि जो शंभू मनु का कार्यकाल आया उसमें भगवान ही ब्रह्मा और इंद्र का पोस्ट लिए। दूसरा मनवंतर आया स्वरोचिस मनु, जिसमें इंद्र का पद रोचन ने स्वीकार किया, तुष्य तथा अन्य लोग प्रधान देवता बने और ऊर्ज स्तंभ आदि सप्तऋषि हुए। इसके बाद तीसरा मनु आया जो प्रियव्रत का पुत्र उत्तान बना, उत्तम तीसरे मनु के रूप में बने। और तीसरे मनु के शासन काल में वशिष्ठ के पुत्र प्रम तथा अन्य पुत्र सप्तर्षि बने, सत्यगण वेद श्रुतगण तथा भद्रगण देवता बने और सत्यजीत को स्वर्ग का राजा इंद्र चुना गया। इसी प्रकार उत्तम का भाई जो तामस नाम से विख्यात था चौथा मनु बना। और इस मनु के कार्यकाल में सत्यगण हरिगण वीरगण देवताओं में से थे, स्वर्ग का राजा इंद्र श्रीखित था, सप्तर्षि धाम के ऋषियों में जेतुर धाम प्रमुख था। और इसी मनवंतर में भगवान विष्णु ने भी हरि मेधा की पत्नी हरिणी के गर्भ से जन्म लिया और वे हरि कहलाए। हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। वर्णन करते हुए जा रहे थे और ज्यों ही सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हरि रित्या हृतो येना गजेंद्रो मोचितो ग्रहात, कि वही भगवान हरि ने हाथियों के राजा एवं अपने भक्त गजेंद्र को घड़ियाल के मुख से छुड़ाया। तो तुरंत परीक्षित महाराज ने, क्योंकि उनको कथा सुनने की लोलुपता रहती थी, सदैव उत्कंठा रहती थी, तो तुरंत परीक्षित महाराज ने सुखदेव गोस्वामी से प्रश्न किया कि हे सुखदेव गोस्वामी जी, आप हमको उस कथा को विस्तार से बताइए, किस प्रकार भगवान हरि ने गजेंद्र को ग्रह के पास से मुक्त किया। सुखदेव गोस्वामी कथा प्रारंभ करते हैं। प्रारंभ में वो त्रिकूट नामक पर्वत का वर्णन करते हैं, जो बहुत ही विशाल पर्वत है, बहुत ही सुंदर प्राकृतिक शोभा है। उसमें एक वन है जिस वन का नाम है ऋतुमत नामक उद्यान। उद्यान मतलब फूलों का वन है, बहुत सुंदर फूल और पुष्पों का वन है। और उसकी प्राकृतिक शोभा, उस वन की प्राकृतिक शोभा इतनी सुंदर है, इतनी सुंदर है कि स्वर्ग लोक के देवता और देवांगनाएं भी वहां पिकनिक करने के लिए आया करते थे। जो कि स्वर्ग लोक भोग भूमि है, वहां भी नंद कानन आदि अनेक प्रकार के उद्यान हैं, बगीचे हैं, लेकिन फिर भी देवता लोग इस पृथ्वी पे, उस त्रिकूट पर्वत पे, इस वन में आते थे पार्टी करने के लिए, पिकनिक करने के लिए। तो समझ सकते हैं हम कि कितना सुंदर प्राकृतिक ऐश्वर्य था उस वन का और उस पर्वत का। और उसी उद्यान के बीच में एक बहुत ही विशाल सरोवर था। उस सरोवर के सुंदरता का वही वर्णन करते हैं, लगभग चार श्लोकों में उस सरोवर की सुंदरता के विषय में सुखदेव गोस्वामी बताते हैं। समस्त प्रकार की प्राकृतिक संपदाओं से युक्त था, वन थे, सुगंधित फूल थे, पुष्प थे, वृक्ष थे जो सुंदर फलों से लदे हुए थे, कोई कटीली झाड़ियां नहीं थी, एकदम मनमोहक दृश्य था। और ऐसे वातावरण में एक गजेंद्र नाम का हाथी था जो सभी हाथियों का नहीं, सिर्फ हाथियों का नहीं, उस जंगल का राजा था। जब गजेंद्र अपने परिवार के साथ चलता था जंगल में, तो जितने भी जंगल के हिंसक पशु या बड़े छोटे जो भी पशु होते थे, शेर, चीता, भालू, बंदर, जितने भी जंगल के पशु होते थे, वो लोग लाइन से खड़े हो जाते थे और सब लोग हाथ जोड़कर उनकी वंदना करते थे। जैसे एक राजा का जब राजा चलता है तो सामान्य प्रजाजन उनकी स्तुति करते हैं, उसी प्रकार जब गजेंद्र रास्ते से चलते थे तो जंगल के सभी पशु उनके शुक्रिया अदा करते थे, उनकी जय बोलते थे अपनी अपनी भाषाओं में, क्योंकि बहुत प्रभाव था, अथाह बल था, बहुत बड़ा परिवार था। गजेंद्र अर्थात राजा, हाथियों का राजा, ऐसे गजेंद्र को एक बार इच्छा हुई अपने परिवार के साथ, क्योंकि वो सरोवर बहुत सुंदर था, उस सरोवर में अपने पत्नी, अपने बच्चे, अपने सगे संबंधियों के साथ गए और जाने के बाद वहां पे उन्होंने क्रीड़ा प्रारंभ किया, खुद नहाए और अपने सूर से पानी लेकर अपने परिवारजनों के ऊपर फेंक रहे थे। एकदम भौतिक उन्माद था, कितना किस स्तर का सुख ले रहे थे हम समझ नहीं सकते। कभी कभी गर्मी के दिन आ गए, अभी गर्मी के दिन में लोग जाएंगे पिकनिक मनाने, कोई लोनावाला जाएगा, कोई गोवा जाएगा, कहां कहां लोग जाएंगे अनेक अनेक प्रकार का पिकनिक मनाने के लिए। तो जस्ट वो जो टूर था गजेंद्र जी का, वो पिकनिक टूर था। और हम समझ सकते हैं कि जिस स्तर का वो आनंद ले रहे होंगे, सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि क्या स्तर का सुख था वो गजेंद्र का। इस भौतिक स्तर की बात की जाए तो वो ऐसा जगह था, ऐसा रमणीक स्थल था कि वहां स्वर्गलोक के सभी देवी देवता आते थे, और ऐसे स्थान पे गजेंद्र जाकर अपने पूरे परिवारजनों के साथ में आनंद ले रहे हैं। लेकिन जैसा कि इस भौतिक प्रकृति का स्वभाव है कि यहां का सुख तथाकथित सुख भी दुखी है, या बहुत ही टेम्परेरी, बहुत ही क्षणिक सुख है यहां का, या तो आपकी भौतिक स्थिति चाहे जो भी हो, भौतिक रूप से आप चाहे कितने भी संपन्न हो, कितने बड़े राजा हो, कितने भी बड़े आपका संगठन हो, कितने लोगों के बीच में आप सुरक्षित महसूस कर रहे हो, लेकिन फिर भी भगवान ने ये संसार की संरचना कुछ विचित्र प्रकार से की है। केशव तुया जगत विचित्र, कुछ विचित्र भगवान ने इस संसार को बनाया है। और सबसे बड़ी विचित्र चीज क्या है इस जगत में, कि कभी भी किसी भी समय कुछ भी ऐसा घटित हो सकता है, जैसा कि इसके पहले वाले श्लोक में 31 नंबर श्लोक में एक शब्द आया था, यदृच्छया। यदृच्छया मतलब भगवान की इच्छा से, उसमें हमारा कुछ प्लानिंग नहीं रहेगा, हमारा कुछ योजना नहीं रहेगा, लेकिन कुछ ऐसा अचानक आ जाएगा कि हम समझ ही नहीं सकते हैं कि अरे ऐसा क्यों हो गया, ऐसा कैसे हो गया। पृथ्वी महाराज के प्रसंग में भी हम देखते हैं कि पृथ्वी महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ पूरा कर लिए हैं, एक अश्वमेध यज्ञ करना बाकी है। इंद्र डर गया, इंद्र ने पाखंड का रूप पकड़ा, साधु का रूप पकड़ा, और एक नहीं, दो नहीं, तीन बार उसने अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा चुराया। अंत में परीक्षित पृथ्वी महाराज उठ गए और उन्होंने प्रण किया कि अभी मैं इंद्र को जान से मार दूंगा, और वो मार सकते थे क्योंकि पृथ्वी महाराज कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे, कोई सामान्य राजा नहीं थे, साक्षात भगवान के ही अंश थे। और उठे मारने के लिए, तब तक वहां ब्रह्मा जी आए और ब्रह्मा जी ने कहा कि ये पाप काम आप मत करो, क्योंकि आप चाह के भी इंद्र को नहीं मार सकते हो, आप प्रयास करके भी इंद्र को नहीं मार सकते हो, ऐसी विचारधारा का आप त्याग कर दो, मैं आपको जो सजेशन दे रहा हूं उसको मानो। मेरा सुझाव क्या है, तो ब्रह्मा जी का एक बहुत अच्छा सुझाव है जो ब्रह्मा जी सुझाव दे रहे हैं पृथ्वी महाराज को। ब्रह्मा जी कह रहे हैं मास्मिन महाराज कृथा अस्म चिंता निशा मयास्म त्वह आत्मतात्मा यद्रियात यतो दैव हतम नुकर्तु मनो अतिरुष्टम विशते तमो अंधम। ब्रह्मा जी कहते हैं हे राजन, दैवी व्यवधानों के कारण उचित ऋषि से आपके यज्ञ संपन्न न होने पर आप तनिक भी क्षुब्ध तथा चिंतित न हो। निसंदेह आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, राजा है राजा काम यज्ञ करना, नो प्रॉब्लम। अपनी तरीके से आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, निसंदेह इसमें कोई डाउट नहीं कि आप कोई गलत काम कर रहे हैं, लेकिन कृपया मेरे वचनों को अति आदर भाव से ग्रहण करें, लेकिन जो मैं कह रहा हूं उसको भी ध्यान से सुनिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप गलत काम कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मेरा एक सुझाव है और जो मैं सुझाव दे रहा हूं उसको भी आप ध्यान से सुनिए। क्या सुझाव है, सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए। प्रारब्ध मतलब यदृच्छया, जो हम नहीं चाहते हैं, हमारा कोई योजना नहीं रहता है, हमारा कोई प्लानिंग नहीं रहता है, हाँ, और एक कहीं भी किसी व्यवस्था में किसी के साथ भी हो सकता है, उसको बोलते हैं प्रारब्ध, दैवी आपदा, और वो हमारे कंट्रोल से बाहर है, उस पर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है, कोई नियंत्रक नहीं है, कभी भी किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि सदैव स्मरण रखें कि प्रारब्ध से जो कुछ घटित होता है उसके लिए हमें अधिक दुखी नहीं होना चाहिए, और न ही जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी समस्याएं कुछ ऐसी विपत्तियां आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते हैं, तो उस पर विजय पाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। जैसे महाभारत का युद्ध खत्म हो गया, महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को शोक हुआ था मैं युद्ध नहीं करूंगा, भगवान ने गीता का उपदेश दिया, ठीक है आप जैसा बोल रहे हैं वैसा करूंगा, युद्ध करूंगा। अर्जुन का मोह दूर हुआ, अर्जुन ने युद्ध किया और विजय हुआ। तो महाभारत युद्ध से पहले अर्जुन को मोह हुआ और महाभारत युद्ध के बाद युधिष्ठिर को मोह हो गया कि मैं राजा नहीं बनूंगा। राजा बनाने के लिए सब कुछ हुआ, लेकिन जब समय आया तो बोले मैं राजा नहीं बनूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे कारण, सिर्फ मुझे राजा बनाने के कारण कि मैं राजगद्दी पर बैठ जाऊं, इतनी बड़ी निसंग हत्या हुई, निर्दोष लोगों को मारा गया सिर्फ मुझे राजा बनाने के कारण। ये जो राज्य है पूरा खून से सना हुआ है, अपने लोगों का ही खून है, मैं नहीं कर सकता, ऐसा पाप का बोझ मैं नहीं उठा सकता हूं, मैं अभी जंगल में चले जाता हूं, मैं राज्य नहीं संभालूंगा। और अर्जुन को तो भगवान ने समझाया, परम पूज्य राधा गुण गोस्वामी महाराज कहते हैं कि युधिष्ठिर महाराज को समझाने का सेमिनार चलता था, ठीक, अभी ये गुरु, अभी ये देवता, अभी ये ऋषि, अभी ये महर्षि, सब लोग जा जाकर समझाते थे कि आपने गलत कुछ भी नहीं किया है, ये जो युद्ध था अधर्म के खिलाफ युद्ध था, लेकिन फिर भी ऋषि महाराज साक्षात धर्म के प्रतीक थे, अपने लोग अपने घर के लोग, तो उनको अच्छा नहीं लग रहा था। भगवान भी समझा के हार गए, लेकिन भगवान ने कहा ठीक है एक ही व्यक्ति समझा सकता है, कौन, भीष्मदेव। भीष्म के पास लेकर गए सबको, वहां पहुंचते हैं सब लोग प्रणाम करते हैं, भीष्मी सबको देखते हैं, भगवान कृष्ण के चरणों में नतमस्तक होते हैं, बहुत लंबी वार्ता है उसमें। और उसमें जब भीष्मदेव जी कुंती महारानी को देखते हैं, तो कुंती महारानी को देखकर भीष्मदेव जी कहते हैं यत्र धर्म सुतो राजा गदारपाणी विकोदर कृष्णो अस्त्री गांडीवम चापम श्रोहित कृष्णस्ततो विपत। हे कुंती, तुम्हारे जीवन में इतना विपत्ति, इतना दुख, क्योंकि युवावस्था में ही पांडु ने शरीर छोड़ दिया था, इतना दुख उठा रहे तुम जीवन में, यत्र धर्म सुतो राजा, चलो दुख मिलता है तकलीफ मिलता है अपने पाप कर्मों के कारण, हम कुछ दुख उठाते हैं संसार में, लेकिन क्या कुंती महारानी ने कुछ पाप किया है? साक्षात धर्म जिनके पुत्र बने हैं, साक्षात धर्म, धर्म और अधर्म, तो साक्षात धर्म ही जिनके पुत्र बने हैं उनसे हम कैसे आशा कर सकते हैं कि उनके जीवन में इतना दुख क्यों? यदि हम कुछ अधर्म करते हैं, पाप करते हैं, तो हमको बदले में दुख मिलता है। लेकिन कुंती महारानी ने कौन सा पाप किया, कौन सा अपराध किया? यदि पाप करती, अपराध करती, तो युधिष्ठिर जैसा पुत्र कैसे प्राप्त कर सकती थी जीवन में? यत्र धर्मसुतो राजा, हाँ, गदार पाणि विकोदर। चलो विपत्ति आती है, संकट आती है, तो विपत्ति और संकट काटने के लिए भी तुम्हारे पास दो दो सामर्थ्यवान पुत्र हैं। गदार पाणि विकोदर, भीम जैसा पुत्र किसी विपत्ति से, किसी संकट से तुमको मुक्त कर सकता है। अर्जुन जैसा गाढ़ाधारी पुत्र, हाँ, गांडीवधारी पुत्र। तो ऐसे लोगों के सानिध्य में तुम हो और उसके ऊपर, चलो छोड़ दिया जाए, मान लो सुहित कृष्णस्ततो विपत। श्रीमद् भागवतम में एक जगह ऐसा वर्णन आया है कि भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ऐसी रक्षा करते थे जैसे पलके आंखों की रक्षा करती हैं, जैसे पलके आंखों की रक्षा करती है। इसी प्रकार भगवान की पूरी योजना, भगवान का पूरा प्लान पांडवों की रक्षा करने में लगा रहता था। इस प्रकार रक्षा करते थे भगवान। और इतना कुछ होते हुए भी जो तुम्हारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है, वो भी तुम्हारे साथ में हर समय रह रहे हैं, तुम्हारे दुख सुख के साथ ही बने हुए हैं, और इतना होने के बावजूद भी ततो विपत, तुम्हारे जीवन में इतना दुख। अर्थात हम भक्ति कर रहे हैं, कुछ भी बहुत बड़ा नेक काम कर रहे हैं, तो हम आशा करते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा नहीं होना चाहिए। हम तो भगवान की शरण में हैं, भगवान का माला जप कर रहे हैं, डेली मंदिर आ रहे हैं, डेली पूजा कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दान दे रहे हैं, पूर्ण कर्म ही कर रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जगत में जो कि हमारे हाथ से बाहर हैं। भगवान कब क्यों क्या करना चाहते हैं, वही चीज आगे भीष्मदेव जी कह रहे हैं कि जब मैं ये सोचता हूं तो मेरी भी बुद्धि, भीष्मदेव जी महाजन है, बोल रहे हैं कि मैं जब ऐसा सोचता हूं तो मेरी बुद्धि भी खुद मोहित हो जाती है। और भीष्मदेव बोल रहे हैं यद्वि जिज्ञासया युक्ता मुह्यन्ति कवयो अपि ही। और इसको जानने का हमको प्रयास भी नहीं करना चाहिए कि भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। हे भगवान, मैं तो आपकी शरण में हूं, मैं आपका भजन कर रहा हूं, मैं कोई पाप नहीं कर रहा हूं, फिर भी हमारे जीवन में आप इतना दुख क्यों दे रहा है? मत समझने का प्रयास करो भगवान ऐसा क्यों कर रहा है। भीष्मदेव जी कह रहे हैं कि यदि अपना दिमाग लगाया और अपना दिमाग लगा के समझने का प्रयास किया तो क्या मिलेगा? मुह्यन्ति कवयो अपि ही। तुम बहुत बड़े बुद्धिमान हो और अपनी बुद्धि के द्वारा यदि भगवान की योजनाओं को समझने का प्रयास किया तो कुछ नहीं मिलेगा, सिर्फ आप मोहित हो जाओगे, भ्रम में पड़ जाओगे। इसलिए भक्ति का क्या नाम है प्रभुपाद जी? भक्ति मतलब क्या? भक्ति मतलब अवश्य रक्षिवे कृष्ण विश्वास पालन। भक्ति मतलब भगवान कृष्ण किसी भी अवस्था में रक्षा करेंगे, इसी का नाम भक्ति है। अवस्थ रसिवे कृष्ण विश्वास पालन, भगवान कृष्ण हमारी किसी भी अवस्था में रक्षा करेंगे, और इस विश्वास की रक्षा करना ये भक्तों की जिम्मेदारी है। इस विश्वास से हमको टूटना नहीं चाहिए, किसी भी अवस्था में भगवान हमें रक्षा करेंगे। अभी हम भक्ति कर रहे हैं, भगवान ने हमें रक्षा नहीं किया, नहीं, हमारा काम यह है कि इस विश्वास को नहीं टूटने देना है। और हम देख सकते हैं पांडवों के जीवन में, भक्तों के जीवन में, आप भक्तों का ही जीवन ले लिया जाए, किसी भी भक्त का जीवन ले लो, आप ध्रुव का ले लो, प्रहलाद का ले लो, हाँ, सुदामा जी का ले लो, हाँ, दुख का पहाड़ लगा हुआ है, लेकिन भक्तों के आदर्श से हमको एक ही चीज सीखने को मिली, क्योंकि भगवान का हर किसी चीज के पीछे भगवान की कुछ न कुछ न कुछ न कुछ चीजें योजना है। हम देख सकते हैं महाभारत में भगवान ने इतना दुख दिया, 14 वर्ष उनको जंगल में जाना पड़ा, अपने परिवार से विक्षोभ हुआ, परिवारजनों के साथ ऋषि महाराज का दुख उठाना पड़ा, तकलीफ उठाना पड़ा, लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी अंततो गत्वा लास्ट का रिजल्ट क्या आता है? तो भगवान गीता में बोलते हैं कि नमे भक्त्या पश्यति, कि मैं अपने भक्तों का किसी भी अवस्था में नाश नहीं होने दूंगा, भले ही प्राकृतिक विपदाएं आए, आपदाएं, लेकिन यदि हम विश्वास को बना के रखें कि भगवान रक्षा करेंगे तो जरूर भगवान हमें रक्षा करेंगे, कि हर के पीछे भगवान की कुछ न कुछ योजना है। हर स्थिति के पीछे, हर परिस्थिति में भगवान का कुछ प्लानिंग है, और उस प्लानिंग को समझने का प्रयास मत करो भगवान का क्या प्लानिंग है, किस तरीके से आपको शुद्ध करना चाहते हैं, किस तरीके से आपको मुक्त करना चाहते हैं, भगवान का क्या योजना है, हाँ, या किस प्रकार से भगवान क्या करना चाहते हैं, हम कुछ भी नहीं समझ सकते हैं। उसी प्रकार गजेंद्र के जीवन में कुछ ऐसा ही आया, गजेंद्र अपने परिवारजनों के साथ में आनंद मना रहा है, पिकनिक मना रहा है, लेकिन पदम पदम यद विपदाम ही तेषम, यहाँ पद पद पर संकट है, और अधिक्षरया वो सब भगवान की योजना से होता है, हम नहीं समझ सकते हैं। उसी योजना का शिकार हुआ गजेंद्र भी। अचानक गजेंद्र का पैर एक ग्रह ने पकड़ लिया, मगरमच्छ ने पकड़ लिया, बहुत संघर्ष चालू हुआ। गजेंद्र के पास भी ताकत कम नहीं था, बहुत ताकत था, और ग्रह के पास भी ताकत भले ही कम था, लेकिन स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, कहीं कहीं स्थान का महत्व होता है, बल का महत्व नहीं होता है। जैसे एक छोटी सी गोली होती है, एक छोटी सी गोली को किसी को खींच के मारा तो सब कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, लेकिन वही गोली यदि अपने स्थान पे जाए, अर्थात कहां बंदूक में जाए, और बंदूक के द्वारा फायर हो तो आदमी मर जाएगा। स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, एक मगरमच्छ की क्या औकात है, यदि एक मगरमच्छ रेत से पड़ा रहे, पानी से निकल जाए, कुत्ते भी उसके खा जाएंगे, लेकिन वही मगरमच्छ यदि पानी में रहता है तो हाथी को भी टक्कर दे सकता है। कंस की जब सभा बैठी थी, कंस भयभीत हो गया था, बार बार कई असुरों को भेजता था कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन सब असुर मारे जाकर वापस आ जाते थे, सब मर जाते थे जा जाकर। वो बहुत भयभीत हो गया और बहुत भयभीत होकर सोचा कि हो न हो इस बालक के द्वारा मेरी मृत्यु निश्चित है, और इस प्रकार बहुत शोक में वो डूब गया। रात को कुछ मंत्री लोग आए, मीटिंग हुआ, और मीटिंग में उन्होंने यही बात किया, स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, कि अभी हम सभी असुरों कहां भेज रहे हैं, उसके स्थान पर भेज रहे हैं, वहां उसकी माया शक्ति का प्रभाव है, कुछ दैवी शक्ति का प्रभाव होगा, जहां के जाकर हमारे बड़े बड़े असुर मर जा रहे हैं, पता भी नहीं चल रहा है। अभी कुछ ऐसा योजना करते हैं, कुछ ऐसी प्लानिंग करते हैं कि इस स्थान पे अपने स्थान पर उसको बुलाते हैं और यहां मारेंगे, यहां मारेंगे, यही प्रेरणा लिया था उसने, स्थान चेंज कर देते हैं, कृष्ण को यहां मथुरा में बुलाते हैं और यहां मारेंगे। स्थानम प्रधानम न बल प्रधानम, निसंदेह गजेंद्र के पास बहुत बल था, हाथी था वो, हाथी ऐसे ही बलवान होता है, लेकिन फिर भी चूंकि मगरमच्छ पानी में था। और ऐसा एक बार बहुत पहले मैं नेशनल जियोग्राफी में सुना था, पूरा पूरा उस सेंटेंस को नहीं पकड़ पाया मैं, लेकिन ऐसा उसका भाव था, जहां तक यदि मैं सही रहा तो जो मगरमच्छ होता है ग्रह, मगरमच्छ का जो पकड़ होता है, ग्रह मतलब ग्रह जो ग्रसित कर ले, ग्रसित करना जो पकड़ ले, उस ग्रह की पकड़ के मामले में माना जाता है, उसका नाम ही ग्राह, ग्राह मतलब जो ग्राह्य कर ले, पकड़ ले, तो उसकी पकड़ के विषय मैंने सुना था कि वो जो मुंह खोलता है और गजे और जब मगरमच्छ किसी चीज को पकड़ता है तो जो पकड़ने का स्पीड होता है किसी चीज को, बहुत प्रेशर से पकड़ता है, सटाक से मारता है, तो जो स्पीड होता है अबाउट 2000 किलोमीटर, जैसे कोई गाड़ी किसी को धक्का मारता है, 150, 200, 300 की स्पीड से गाड़ी जा रही है, धक्का मारता है उड़ जाता है, राइट, उसी प्रकार वो जो स्पीड होता है उसके जबड़े का पकड़ने का स्पीड जो होता है लगभग 2000 किलोमीटर के स्पीड में आता है जबड़ा, खटाक से एक सेकंड के अंदर पकड़ता है, और जो पकड़ उसकी होती है जब किसी को पकड़ता है तो उसका जबड़ा पूरा धंस जाता है, उस जीव के अंदर पूरा धंस जाता है, और कितना भी बलवान जीव क्यों न हो लेकिन इतना करंट सा लगता है तुरंत, एक सेकंड भी सोचने का अवसर नहीं मिलेगा, इतना स्पीड होता है उसमें कि सोचने का अवसर ही नहीं देगा वो, और जब उसकी पकड़ में कोई चीज आता है तो इतना तीव्र गति से प्रेशर आता है कि कितना भी बलशाली जीव क्यों ना हो लेकिन उस समय की जो पीड़ा है उसकी अथाह पीड़ा, एक झटके में इतना अथाह पीड़ा मिलता है कि उस पीड़े के कारण, उस कष्ट के कारण वो जीव टूट जाता है, तुरंत टूट जाता है, और इसलिए वो उसका दिमाग नहीं काम करता है। इनका भी ऐसे संघर्ष चला, गजेंद्र बहुत बलशाली थे, एक दो बार तक वो खींच कर लेकर आ भी गए थे वो बाहर तक, लेकिन फिर भी इतना तकलीफ था, इतना दर्द था उनको कि उस दर्द के कारण लड़ नहीं पा रहे थे, सिर्फ पीड़ा के कारण, शक्ति के मामले में कमी नहीं था, वो खींच सकते थे, रेत तक खींच कर लेकर आए भी थे शुरुआत में, जब उनके बल का तेज था, जब उनका बल पूरा लगा हुआ था, तो उस स्पीड में खींच कर लेकर आए भी थे, लेकिन फिर भी बाहर तक नहीं ले पाए क्योंकि बहुत तकलीफ था पैर में, पूरा पकड़ लिया था, पूरे जबड़ा धंस गया था पैर में और निकल नहीं पाए। फिर धीरे 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 जो कि पानी का जंतु है और वो गजेंद्र को वापस अंदर लिया, जब शुरुआत में आए थे गजेंद्र जी, उनकी पत्नी थी, उनके बच्चे थे, उनके सगे संबंधी सभी लोग थे, लेकिन अभी साथ में कोई नहीं है, सब लोग दूर खड़े हो गए और बहुत ही निराशाजनक स्थिति में रोते हुए भावनाओं से गजेंद्र ने अपने परिवारजनों की तरफ देखा। इसके पहले वाला श्लोक का यही भाव था, बहुत ही करुण भाव में रोते हुए दृष्टि में अपने संबंधी जनों को देखा और उनको जीवन में वैराग्य आया, देखकर वैराग्य आया। क्या वैराग्य उनके जीवन में आया कि मैं इन लोगों के बीच में था, इन लोगों के बीच में रहकर इन लोगों को आनंद देता था, उनके लिए ही हमारा जीवन होता था, जब मैं कहीं भी जाता था इन लोगों को साथ में लेकर जाता था, साथ में हमारी सभी योजनाएं बनती थी, साथ में हम लोग आनंद लेते थे, साथ में खाते थे, साथ में पीते थे, साथ में बैठते थे, साथ में घूमते थे, साथ में पिकनिक करने के लिए आए। लेकिन आज मेरे जीवन में जब दुख आया, दुख की घड़ी में सब बाहर खड़ा होकर तमाशा देख रहे हैं, कोई हमारा हेल्प करने के लिए नहीं आ रहा, और कोई क्या हेल्प कर सकता है, कोई किसी की क्या सहायता कर सकता है, इस जगत में कोई किसी की सहायता नहीं कर सकता, सत्य तो यह है। भगवान कृष्ण युधिष्ठिर महाराज को राज्य मिल गया और इसके बाद भगवान कृष्ण द्वारका जाने की तैयारी कर रहे थे, रथ पर बैठे हुए थे, पांडवगढ़ और कुंती महारानी रथ को पूरा घेर कर खड़े थे। भगवान कृष्ण जो ही रथ से जाने की तैयारी कर रहे थे, उसी समय उन्होंने देखा कि महल के द्वार से उत्तरा जो अभिमन्यु की पत्नी थी बहुत ही भयभीत अवस्था में दौड़ते हुए भागकर आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। हे कृष्ण मरी रक्षा करो, हे कृष्ण मरी रक्षा करो, ऐसे चिल्लाते हुए आ रही है। देव देव जगतपते, हे देवताओं के देवता, हे जगत के पिता, हे जगत के पालनकर्ता, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। भगवान कृष्ण मानो पूछते हैं कि अरे तुम्हारे घर में तुम्हारे ससुर हैं, युधिष्ठिर महाराज हैं, अर्जुन हैं, भीम हैं, इतने बड़े बड़े यशस्वी लोग पड़े हैं, और अपने घर के, क्योंकि कभी भी हमारे घर में कुछ भी पति आता तो पहले अपने घर वालों से शेयर करते हैं, अपने घर वालों से आशा करते हैं कि हमारी रक्षा करेगा, थोड़ी बाहर वालों को हम चिल्लाते हैं, राइट। तो मानो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि आपके घर में इतने लोग पड़े हैं और एक पुकार पे, एक कष्ट पे सब लोग तुम्हारी सहायता करने को तैयार हो जाएंगे, राइट, क्योंकि अभिमन्यु नहीं है, अर्जुन है और युधिष्ठिर महाराज हैं, सब लोग कितना प्रेम करते रहे होंगे उत्तरा को, हम सोच सकते हैं। तो मानो भगवान यही बोल रहे हैं कि तुम्हारे एक शब्द पे तुम्हारा सब लोग कष्ट हरने को तैयार हो जाएंगे, तो तुम मुझे क्यों पुकार रही हो? पाही पाही महायोगी देव देव जगतपते, मुझे क्यों पहले पुकार रही हो? तो मानो उत्तरा कहती है, नान्यम तद्भयम पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम, मैं इसलिए आपको पुकार रही हूं कि साक्षात मृत्यु ने मेरे ऊपर अटैक किया है, और इस जगत का जो स्वभाव है, यत्र मृत्यु परस्परम, इस संसार में सभी लोग एक दूसरे से परस्परम मृत्यु का संघर्ष कर रहे हैं, सभी लोग इस संसार में मरने वाले लोग हैं और मृत्यु के बीच में बहुत बड़ा संघर्ष चल रहा है, कोई किसी को यहाँ जीवन नहीं दे सकता है, एक दूसरे का जीवन हम ले सकते हैं क्योंकि मृत्यु में परस्पर प्रतिस्पर्धा है, कोई मरना नहीं चाहता इस संसार में, यत्र मृत्यु परस्परम। तो इस जगत का यह स्वभाव है कि हम एक दूसरे को मार तो सकते हैं लेकिन जीवन कोई किसी को नहीं दे सकता है, और अभी मेरी स्थिति एक में मरने वाली हूं, कोई ऐसा चीज आ रहा है जो मुझे और मेरे गर्व सहित जला रहा है, बहुत ही तकलीफ है कि मैं मरने ही वाला हूं, और मुझे मेरी चिंता नहीं, चलो मैं मर जाऊं लेकिन मेरे गर्भ की रक्षा मैं करनी चाहती हूं, मेरे गर्भ संकट में है, मेरा गर्भ मरने वाला है और कोई नहीं बचा सकता है, कोई नहीं बचा सकता है इस संसार में मृत्यु से। एक दूसरे को मृत्यु लोग दे सकते हैं लेकिन किसी कोई जीवन नहीं दे सकता है। सत्य घटना, एक बार एक झील में एक परिवार के लोग, फैमिली के लोग बैठकर एक नाव में यात्रा कर रहे थे, जा रहे थे, बहुत ही सुंदर माहौल था, छोटा सा बच्चा नाव में था और वो नाव से पैर नीचे लटका के बैठा था, परिवार के लोग सब लोग बैठे थे और उस बच्चे ने पैर से नाव से पैर नीचे रख दिया था और ऐसे ही लोग जा रहे थे घूमते हुए, अचानक एक मगरमच्छ ने उस बच्चे का पैर पकड़ लिया। एकदम अलग माहौल था लेकिन फिर भी अदृश्य है, जैसा कि हम वर्णन कर रहे हैं, कभी भी इमेजिन नहीं कर सकते आपकी क्या कब कब क्या हो जाएगा जीवन में, हम सोच नहीं सकते हैं। उस लड़के का एक मगरमच्छ ने आकर पैर पकड़ लिया, अचानक हलचल मल गया, पूरा माहौल चेंज हो गया। अभी उसकी माँ, उसके पिताजी भी थे, माँ लड़के को पकड़ लिया। नाविक ने कहा कि अभी हमारे पास दो विकल्प है और समय भी सिर्फ 5 से 10 सेकंड है, दो विकल्प क्या है। पहला विकल्प है कि लड़के का पैर काटना पड़ेगा ताकि जितना पार्ट तो पकड़ा है, लड़के का पैर काटा तो वो निकल जाएगा, या तो इस लड़के को पानी में फेंकना पड़ेगा। बहुत कम समय है, उसे अनाउंस किया, नहीं तो क्या होगा, बोला कि इस ये मगरमच्छ पूरे नाव को पलटी मार देगा, क्योंकि जोर लगाएगा, खींचेगा और नाव का बैलेंस बिगड़ेगा, सब लोग जाएंगे, कोई नहीं बचेगा। इतना ही जब सब लोगों ने सुना, सब सगे संबंधी पूरे परिवार के लोग ही बैठे थे, माता का हृदय था पुत्र को कैसे छोड़ सकती है, लेकिन जितने भी रिश्तेदार थे, सगे संबंधी, सब लोग उठे, उसके माता पिता को जबरदस्ती पकड़ा, क्योंकि काटने कोई शस्त्र नहीं था, पैर को कैसे काटे हो, नहीं काट सकते हैं। सब लोगों ने पकड़ा और पकड़ने के बाद हरे कृष्णा फेंक दिया, क्या कर सकते। कहने का मतलब यही है कि जीवन में एक दूसरे को लोग मार सकते हैं लेकिन बचा कोई नहीं सकता है, जीवन किसी को दे नहीं सकता है, कोई किसी को नहीं जीवन दे सकता है। यही बात उत्तरा ने भी कहा, फिर भगवान ने उत्तरा के गर्भ की रक्षा किया, महाभारत में कहानी पढ़ सकते हैं। गजेंद्र ने भी यही रियलाइज किया, जितने भी घर के लोग हैं, सगे संबंधी, सब लोग दूर खड़े हैं और इसकी स्थिति खराब है, एकदम कंडीशन मरने की स्थिति में है। फिर उसने भगवान को स्मरण किया, भगवान को याद किया, तो ये जगत का स्वभाव है, पदम पदम यद विपदाम इतेषां, कि संसार में पद पद पर संकट है, पद पद पर विकृति है। वास्तव में गजेंद्र की कहानी नहीं है, ये हर व्यक्ति के जीवन की कहानी है। हम सभी लोग एक दृष्टिकोण से गजेंद्र की स्थिति में ही हैं। जो लोग बॉम्बे में रहते होंगे, अरबपति, खरबपति, करोड़पति होंगे, बंगला होगा, गाड़ी होगा, पत्नी होंगे, बच्चे होंगे, सभी भौतिक भोग का ईश्वर का सामग्री होगा, और उसके बीच में उनको लगता होगा कि बस हम कंट्रोलर हैं, हम मालिक हैं, हमको जीवन में सब कुछ मिल गया, और इस भ्रम में, इस इल्यूजन में रहते हुए संसार में जीवन जी रहे होंगे या जीते होंगे। ऐसे ही हजारों हजारों लोग संसार में ऐसे ही जीवन जीते होंगे, लेकिन जीवन का यथार्थ सत्य ये है कि मत लिप्त हो, क्योंकि जिस अवस्था में हम रह रहे हैं, जहां रह रहे हैं, वो सब कभी भी कुछ भी पलक झपकते ही सब चेंज हो जाएगा, हमको पता भी नहीं चलेगा, अरे ऐसा कैसे हो गया, हाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। इसलिए किसी भी अवस्था में हमारे जीवन का कर्तव्य है कि चाहे स्थिति सही हो चाहे बुरी हो, वास्तव में कोई भी स्थिति सही नहीं है, इसलिए किसी भी अवस्था में हमको भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, यदि हम प्रॉपर प्रोटेक्शन चाहते हैं तो, प्रॉपर रक्षा चाहते हैं तो, क्योंकि भगवान सबसे बड़े शुभचिंतक हैं। वक्त आने पर सब लोग सबका साथ छोड़ सकते हैं और छोड़ देते हैं, शंकराचार्य लिखते हैं, काते कांता कस्ते पुत्र
संसारे अयभयमित काते कांता कस्ते पुत्र संसारो अयमयतिव विचित्र त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवति भवाणवतरके नौका।
काते कांता कस्ते पुत्र, इस संसार में कैसी पत्नी, कैसे बच्चे, कैसे पिता, कैसे माता, चाहे कैसे सगे समझे, कैसे कुछ भी ले लीजिए, कैसे नेता, कैसे लीडर, कैसे जो भी है, जहां भी हम अपने आप को प्रोटेक्शन महसूस करते हैं।
काते कांता कस्ते पुत्र संसारे अयमयतिव विचित्र,
हाँ, कैसा पुत्र, कैसे माता, कैसे पिता, अरे ये संसार बहुत ही विचित्र है।
क्या है?
ये संसार बहुत ही विचित्र है। एक समय होता है एक माँ का स्तन का दूध पीते हैं, बड़े भाई छोटे भाई रहते हैं, बहुत प्रेम रहता है। हाँ, जब छोटे छोटे रहते हैं तो बहुत प्रेम रहता है, राम लक्ष्मण की भांति हम जीवन जीते हैं, लेकिन वही धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, शादी हो गई, विवाह हो गया, फिर क्या होता है, वही भाई है, वही सब कुछ है, वही संबंध है, लेकिन अभी मर्डर कर देते हैं, एक दूसरा भाई दूसरे भाई को देखना नहीं चाहता है, विचित्र। यहाँ बोलते हैं कौन कैसा किसका है, यहाँ भाई वही माता पिता वही पुत्र रहते हैं, एक समय रहता है बहुत प्रेम बहुत भाव रहती है, लेकिन वही एक समय आता है, हाँ, चूज करना पड़ता है बेटे को, क्या हमारे साथ रहेंगे माता पिता के साथ रहेंगे, नहीं नहीं माता पिता को साइड में कर दो, नो प्रॉब्लम, वही माता पिता का प्रेम विच्छेद हो जाता है। तो वही शंकराचार्य बोल रहे हैं कास्ते कांता कस्ते पुत्र संसारे अयमयतिव विचित्र, अरे संसार बहुत विचित्र है, कौन किसका है यहाँ पे कोई समझ नहीं सकता है, सब स्वार्थमय संसार है। लेकिन यदि हम भगवान के शरण में जाते हैं सब कुछ त्याग करके, तो भगवान और भगवान के भक्तों में जैसे त्रिजगति सज्जन संगति रेखा भवती भवाणव तरके नौका, ये संसार बहुत ही विचित्र है, ये भव सागर के समान है, और यदि भव सागर को तरना चाहते हैं, पार करना चाहते हैं, तो क्या है, बोलते हैं सज्जन संगति रेखा, साधुओं की संगति करो या भगवान की संगति करो, क्योंकि जगत में साधु और भगवान दो ही ऐसे लोग हैं जिनका इसमें कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है। यदि हमने आपको प्रचार किया कि आप भगवान के शरण में आओ, भगवान के भक्त बन जाओ, भगवान का नाम जप करो, भगवान के मंदिर में आओ, भगवान की पूजा करो, उसमें साधु क्या स्वार्थ है, क्या मिलने वाला है, यदि आप भजन करते साधु क्या मिलने वाला है, कुछ भी नहीं मिलने वाला। भगवान भी बोलते हैं मनमना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु माम वैसी सतम ते प्रति जाने पीयोष में। तो इस संसार में साधु और भगवान के प्रति किया गया भक्ति, साधु और भगवान के प्रति किया गया प्रेम, यही एक निस्वार्थ है। वरना जितना भी संसार में प्रेम है, वास्तव में प्रेम तो है नहीं, काम है, काम मतलब जहां अपनी इंद्र तृप्ति की बात हो, इस संसार में सब लोग अपने इंद्र तृप्ति को देख रहे हैं, और जिस दिन इंद्र तृप्ति पूरा नहीं होता संबंध टूट जाते हैं, हर संबंध की बात ऐसी है, पर्सनल स्वार्थ के ऊपर सब आश्रित है। लेकिन यदि भगवान और भगवान के भक्तों के प्रति प्रेम किया जाए तो प्रेम निस्वार्थ होता है, और उस निस्वार्थ प्रेम के कारण फिर हम इस भव सागर को, विचित्र भव सागर को पार कर सकते हैं, वरना तो संसार बहुत ही विचित्र है। माम कुरु धन जन यौवन गर्व हरति निमेषात् काल सर्वम मायामयमिदाखिलम नित्वा ब्रह्म पदम त्वं प्रविश विदित्वा। माम कुरु धन जन यौवन गर्व, बहुत धन है, जन है, संपत्ति है, बल है, कभी कभी लोग इस अहंकार में रहते हैं, जैसे गजेंद्र भी अपने आप को कंट्रोलर मानता था, नियंत्रक मानता था, हाँ, कि मैं राजा हूँ, सब लोग चलते तो मुझे सलाम मारते हैं, वाह वाह करते हैं, मेरी जयकार करते हैं, हाँ, लेकिन किसी भी अवस्था में चाहे आप कितने भी बड़े बन जाओ, ये हमारा बहुत बड़ा भ्रम है इस स्थिति में जीना कि हम मालिक हैं, हम कंट्रोलर हैं, वास्तव में इस संसार में कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं है, हम सब लोग कंट्रोल्ड हैं, कोई हमको कंट्रोल कर रहा है, और उस तरीके से भगवान कंट्रोल करते हैं। भागवतम में कहा गया है कि जैसे एक किसान एक बैल को कंट्रोल में रखता है, एक बैल को जब किसान लेकर जाता है तो बैल के नाक में एक रस्सी होती है, और बैल तब तक स्वतंत्र है, उतना सीमा तक ही स्वतंत्र है जहां तक उस किसान ने उस रस्सी को फ्री रखा है, राइट, और रास्ते से जाते हुए जो ही बैल हरा हरा खेती हरा हरा घास देकर उसको खाने का प्रयास करता है तो बैल किसान क्या कर देता है, वो रस्सी को खींच देता है, ठीक है। तो इसी प्रकार भगवान ने सबको अलग अलग स्थिति में कंट्रोल करके रखा है, और कभी भी उस अवस्था तक पहुंचने के बाद हमको ये नहीं समझना चाहिए कि हम कंट्रोलर हैं,
हम कंट्रोलर जरूर हैं, छोटे मोटे कंट्रोलर हैं, भगवान कंट्रोलर है, कंट्रोल की भावना हमारे अंदर भी है, लेकिन हम पूर्ण कंट्रोलर नहीं है, पूर्ण नियंत्रक नहीं है। कभी कभी समझते हैं कि सारी स्थितियां हमारे बस में, हमारे कंट्रोल में है, हम करता, मैं करने वाला हूं, नहीं। तो इस प्रकार गजेंद्र ने स्थिति को समझा और इसके बाद भगवान को याद किया, और भगवान को याद करने के बाद गजेंद्र अभी भगवान की शरण में जाने की बात कर रहा है। कभी तक तो मैं लोगों के बीच में था, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम था कि लोग अपने हैं, हमारी रक्षा करेंगे, मुझे संतुष्टि देंगे, लेकिन ये मेरा बहुत बड़ा भ्रम था। और अभी वो भगवान की शरण में आ रहा है। अल्टीमेट जीवन का लक्ष्य यही है कि किस प्रकार भगवान की शरण ग्रहण किया जाए। पदम पदम यद विपदाम इतेषाम, ये संसार कष्टों से, दुख से भरा हुआ है, लेकिन इस कष्ट से और दुख से निजात पाने का हम प्रयास कर रहे हैं। हर व्यक्ति का प्रयास यही चल रहा है कैसे दुख और कष्ट निवृत्ति हो जाए, कहीं अलग अलग जगह पे आश्रय लेके। लेकिन वास्तव में पर्याप्त बुद्धिमान वही है जो समय गवाए बगैर भगवान के आश्रय में आ जाए। ये समझ ले कि कोई किसी को आश्रय नहीं दे सकता है, कोई किसी को रक्षा नहीं कर सकता है, लेकिन कभी कभी मूर्ख होते हैं, क्योंकि भगवान के आश्रय में आने के लिए भी वास्तव में पर्याप्त सुकृति होना चाहिए। एक व्यक्ति को कैंसर हो गया, उसके परिवार वाले भक्त हैं, परिवार वालों ने कहा कि अरे अभी तुमको कैंसर हो गया, तुम भगवान के मंदिर चलो, भगवान से प्रार्थना करो। हाँ, बोला नहीं नहीं, मुझे भगवान की प्रार्थना पर मंदिर पर विश्वास नहीं है, क्या कर लेगा भगवान। हमको किस पे भरोसा है, हमने जो करोड़ रुपया बैंक में रखा है उस पे भरोसा है कि मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास पैसा फेंकूंगा और ठीक हो जाऊंगा, उस पे हमको ज्यादा भरोसा है। मंदिर में जाने से क्या ठीक हो जाएगा? ज्यादातर नास्तिक प्रवृत्ति के लोग ऐसे ही होते हैं, ज्यादातर लोग ऐसे ही होते हैं, लेकिन भक्त जो होते हैं वो भगवान पे भरोसा करते हैं, भगवान पे विश्वास करते हैं किसी भी स्थिति में। क्योंकि ठीक है, हमको उद्यम करना चाहिए, हमको प्रयास करना चाहिए, प्रयास और प्रार्थना दोनों साथ में चलनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ हमारे उद्यम में, सिर्फ हमारे प्रयास में सब कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि भगवान यूं आपका करोड़ रुपया उड़ा सकते हैं, यूं खत्म हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। एक बार ऐसे ही एक भक्त है इस्कॉन में, और बहुत ही खराब बैकग्राउंड से आए थे, प्रभुपाद जी के सानिध्य में आए, अच्छा भक्ति प्रारंभ किया, बहुत ही अच्छे भक्त बन गए, लेकिन कुछ कारणवश वो पुनः इस्कॉन से चले गए, और जो भी पाप प्रवृत्ति थी, चार नियम, फोर रूल्स एंड रेगुलेशन, पूरा तोड़ दिया और पूरे पूरे पाप वृत्ति में लग गए, पाप करने लगे। प्रभुपाद जी के बाद पता चली कि ऐसे जो आपका एक शिष्य था, अभी ऐसी इसकी स्थिति हो गई, वो बाहर में ऐसा ऐसा कर रहा है। प्रभुपाद जी ने उस भक्त को एक लेटर लिखा, लेटर क्या लिखा, इंग्लिश में लेटर है, श्री प्रभुपाद रोट टू दैट डिवोटी। प्रभुपाद जी उस भक्त को लेटर लिखे, बिकॉज यू हैव वन टाइम चेंटेड द नेम ऑफ कृष्णा सिंसियरली, यू विल नॉट एबल टू रिमेन इन माया फॉर ए लॉन्ग टाइम। कृष्णा विल इवेंचुअली ड्रैग यू बैक। चूंकि आपने कृष्ण का प्रसाद खाया है, कृष्ण का नाम जप किया है, कृष्ण का दर्शन किया है, कृष्ण के भक्तों के साथ नाचा है, गाया है, तो भगवान आपको माया में बहुत लंबे समय तक नहीं रहने देगा, वो आपको माया से खींच लेगा, देखना आप। इसलिए भगवान की शरण करना चाहिए, कितना प्रोटेक्शन है इसमें, कितना प्रोटेक्शन है। और धीरे धीरे क्या हुआ, कुछ समय बीता, वो भक्त संसार में रहा और उसको ब्लड कैंसर हो गया, और डॉक्टर ने कहा कि आपके पास टाइम सिर्फ 6 महीने। ब्लड कैंसर बहुत तकलीफ होता है, पूरे शरीर में तकलीफ कष्ट हो गया, और 6 महीने सिर्फ समय बचा है, और चूंकि 6 महीना समय बचा है, रिजेक्ट माल हो गया है, तो जितने भी उनके आसपास आजू बाजू वाले थे धीरे धीरे रिजेक्ट करने लगे, उनको छोड़ने लगे, दिखावा का प्रेम, दिखावा का प्रेम, यहां बैठना उठना बातें करना जीत करना, लेकिन सबको मालूम है कि 6 महीने का आदमी है, तो जो घनिष्ठ संबंध था वो छूट चुका था सबका,
और उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया कि अभी कोई मुझसे वास्तविक प्रेम नहीं कर रहा है, कि मैं भी खुद जाने वाला हूं, अरे अपना खुद का शरीर भी हमसे प्रेम नहीं कर रहा है जिसके लिए मैंने इतना सोचा। और अचानक उनको क्लिक हो गया, कौन सा, ये प्रभुपाद जी के शब्द कि कृष्ण आपको नहीं छोड़ेगा। क्योंकि कुछ समय तक उन्होंने संगति किया था, कुछ स्वीकृति बनी थी, जिसके कारण जैसा कि गजेंद्र के जीवन में हम देखते हैं, दुख सबको मिलता है संसार में, दुख बहुत लोग, सब लोग दुखी हैं, लेकिन कितने लोग भगवान की शरण में आते हैं। वास्तव में भगवान की शरण में वही आएगा जिसके जीवन में कुछ बैलेंस इकट्ठा है, स्वीकृति इकट्ठा है। एसाम तंत गदम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद मोह विनुर्मक्ता भजनते माम दृढ़व्रता। कुछ न कुछ जीवन में स्वीकृति होनी चाहिए, ऐसे सब लोग नहीं आ जाएंगे। गजेंद्र के जीवन में स्वीकृति था, देख सकते हैं, गजेंद्र राजा था, इंद्रदुम महाराज, इंद्रदुम नाम का राजा था पिछले जन्म में, और उसने अगस्त्य मुनि एक बार आए, और राजा एकदम अच्छा भक्त था, सोचिए इतना पावरफुल भक्त था, वो समाधि में था, बैठ के भगवान का चिंतन कर रहा था, अगस्त मुनि आया, उसको पता नहीं चला, उस स्तर का भक्त था। और अगस्त मुनि ने श्राप दे दिया कि एक ऋषि आया, एक मुनि आया, एक साधु आया, तुम स्वागत नहीं कर रहा, तुम ढोंग कर रहा है, ऐसे हाथी की तरह खड़ा है, बैठा है, देख नहीं रहा है, जा तू हाथी बन जा। हरे कृष्णा, नो प्रॉब्लम। भक्त का गुण क्या है, चरणों बोलते हैं, सहनशीलता, किसी भी स्थिति में सहनशीलता, उसे सहन किया। वो बोल सकता था, अरे मैं तो भगवान का चिंतन कर रहा था, मैं तो भजन कर रहा था, आप ऐसे कैसे श्राप दे सकते हैं। नहीं, चित्रकेतु महाराज जब पार्वती जी ने श्राप दिया, शंकर जी ने कहा कि देखो हम जो विष्णु के भक्त होते हैं उसके अंदर भी इतनी क्षमता है कि आपको श्राप दे सकता है, लेकिन ये साधु है, ये भक्त है, इसे सुन के चला गया, और उसके अंदर भगवान कृपा निहित होती है। सहनशीलता का बहुत ही बड़ा गुण है, क्योंकि भगवान सरल स्थान पे होते हैं, और ऐसे हर भक्तों को प्रोटेक्शन भगवान देते हैं। इसलिए चेतन जो पाठ पढ़ाया है, तिरादपी सुनी चेना तरोरी वह सही सुना अमान इना मान देना कीर्तनीय सदा हरि, क्योंकि भक्ति का बहुत बड़ा रहस्य इसके अंदर छुपा हुआ है। गजेंद्र ने बोला ठीक है, नो प्रॉब्लम, राजा बन गए, लेकिन वो भक्त है, अज्ञात स्वीकृति इकट्ठा थी, इसलिए लास्ट मोमेंट पे आके किया, भगवान ने पूरा फायदा दे दिया। तो भगवान की शरण में आने के लिए भी पर्याप्त स्वीकृति होना चाहिए, स्वीकृति होना चाहिए। इसलिए जब भी कोई मंदिर में, चूंकि हम प्रचारक हैं, प्रभुपाद जी का मूवमेंट है, तो प्रचारक का काम यही है कि ये न कहने प्रकार है ना, भले वो माला नहीं पकड़े, कुछ भी नहीं करे, उस पर मैं याद करता हूँ परम पूज्य गिरिराज स्वामी महाराज का एग्जाम्पल। मैंने सुना था कि एक बार उनकी माँ मंदिर मिलने के लिए जाती है, और वो माँ जब मिलने के लिए गई तो उस समय वो सन्यासी थे, और उन्होंने अपनी माँ को एक गीता दिया और गीता का पैसा लिया, गीता का पैसा लिया। तो लोगों ने पूछा कि अरे आपने अपनी मम्मी से क्यों पैसा लिया, अपनी माँ से पैसा क्यों लिया। तो गिरिराज महाराज बोलते हैं कि ये हमारी माँ का अज्ञात स्वीकृति का अकाउंट है, ये जो पैसा आया ये उसके लिए अज्ञात स्वीकृति का काम करेगा, यदि लेके चली जाती तो उतना पावरफुल स्वीकृति नहीं बनता। इस प्रकार किसी भी तरीके से, चाहे प्रसाद खिला देना, भगवान का प्रसाद दे देना, भगवान का माला दे देना, भगवान का नाम का जप करा देना, एक बार प्रभुपाद जी बोलते हैं कि चूंकि आपने एक बार भगवान का नाम लिया इसलिए भगवान आपको छोड़ेगा नहीं, भगवान कुछ न कुछ योजना बनाएगा, प्लानिंग बनाएगा और आपको खींच कर लेकर आएगा। तो कौन है भगवान से दयालु, तुम अभी न के दयालु जगत संसार है, कौन भगवान ज्यादा सुचिंतक हो सकता है, हितैषी हो सकता है। कि भगवान बार बार बोलते हैं, बार बार नहीं सुनते हैं, बार बार बोलते हैं ऐसा मत करो, बार बार नहीं सुनते, लेकिन फिर भी भगवान ठीक है चलो, क्योंकि भगवान को मालूम है नेचर, प्रकृति, गुण और जीव का कंडीशन, भगवान को मालूम है कि संसार का स्वभाव क्या है। इसलिए यदि हम प्लानिंग करके, योजना बना के भगवान की शरण में जाएंगे, भगवान की शरण को पकड़ के रखेंगे, और हम सभी भक्त लोग आ गए, जो भक्त लोग आ भी गए हैं, तो हम लोग को भी इस अवसर को हाथ से नहीं जाने देना चाहिए, बहुत मेहनत करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए कि भगवान ने अवसर दिया है भगवान की शरण में रहने का, तो कैसे इसका पूरा पूरा फायदा हमको लेना चाहिए। क्योंकि अल्टीमेट हम लोग अभी प्रभुपाद जी कृपा से, वैष्णव कृपा से उपयुक्त शरण में है, यही शरण ग्रहण करनी चाहिए, यही वास्तविक स्थान है शरण ग्रहण करने का। वरना संसार में जो लोग जहां भी शरण ग्रहण करते हैं, हाँ मैं भक्त की कहानी बता रहा था, फिर भक्त को रिलाइज हुआ कि अरे देखो कैसे कैसे क्या हुआ, लेकिन फिर अंतोगत्वा उसने जो भक्ति किया था उसको याद आया, वो कुछ गीता प्रवचन सुना तो उसको क्लिक किया, इस स्थान दुखालय में शरीर दुखालय में सब क्लिक किया, और फिर धीरे धीरे उसका दिमाग ट्रांसफर हुआ, और अंत में भगवान को स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति करते हुए शरीर का त्याग करता है। इस प्रकार यदि कोई भगवान के शुद्ध भक्तों के संपर्क में आता है तो भगवान उसकी रक्षा करते हैं। गजेंद्र के जीवन में इतना लंबा अध्याय चला गया, कहीं भक्ति का पता नहीं चला, लेकिन अंतोगत्वा लास्ट में जो भक्ति किया था, स्वल्पमपि अस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। जीवन में यदि कुछ भी हमने किया है भगवान के लिए तो भगवान उसको याद रखेंगे, भगवान उसको याद रखेंगे। और संसार में, संसार का कुछ स्वभाव ऐसा ही है, संसार में यदि आप परम पूज राधा गोविंद गोस्वामी महाराज की कथा में बोलते हैं कि संसार का स्वभाव क्या है, संसार का स्वभाव यह है कि यदि आप किसी के लिए पहाड़ जितना करेंगे, पहाड़ जितना करेंगे जीवन भर, तो उसके मुंह से उत्तर आएगा आपने हमारे लिए क्या किया, और क्या किया तो सरसों के दाने जितना बता देगा इतना किया आपने। हर जब बेटा बड़ा होता है तो बाप से जब डिस्कस चलता है तो बेटा बाप को यही बोलता है क्या किया आपने हमारे जीवन में, पत्नी बोलती क्या किया आपने हमारे जीवन में हमारे लिए, राइट, आपने इसको किया इसको हमारे लिए क्या किया। तो यदि जीवन में आपने संसार के लिए, लोगों के लिए पहाड़ जितना किया तो संसार वाले उसको सरसों के दाना इतना मानेंगे, लेकिन हमारे ठाकुर जी में, हमारे राधा राज में कुछ उल्टा है। यदि ठाकुर जी के लिए आपने सरसों के दाने इतना किया तो भगवान उसको पहाड़ जैसा मानेंगे कि हमारे लिए कुछ किया उसने, ऐसा है। और भगवान उसको याद रखते हैं, मौका देखते हैं, और मौका देखा के बगैर योजना बनाते हैं और उठा लेते हैं। तो खासकर यही लेसन है इस श्लोक के माध्यम से, गजेंद्र जी के माध्यम से, और हम लोगों के लिए शिक्षा यही है कि गजेंद्र ने भी भगवान की शरण ग्रहण किया लास्ट मोमेंट में। तो उन्होंने लास्ट मोमेंट में किया, लेकिन जब हमको सत्ता पता हो गया कि हमको शरण में जाना ही है तो हम समय क्यों व्यर्थ करें, हम भगवान के शरण को पकड़ कर रखे हैं। हरे कृष्ण, श्री प्रभुपाद की, श्री राधाराज हरे भगवान की, हरे गौर प्रेमानंद हरे। जय कृष्ण।